आगे चलिए आयत 110, तुम नमाजें कायम रखो और जकात देते रहा करो, और जो कुछ भलाई भी तुम अपने लिए आगे भेजोगे सब कुछ अल्लाह के पास पालोगे, बेशक अल्लाह ताला तुम्हारे अमाल को खूब देख रहा है। जब भी इस आयत पे आती ना मुझे बेल्ट याद आता है जिसपे सामान आता है, जहाज से निकलकर सारे मराहिल तय करके आप कहाँ जाते हैं, बैगेज कलेक्ट कर लें। कभी ऐसा हुआ कि जिसका मर्जी बैग उठा लो, पता नहीं होता ही होगा, वो आगे जाते टैग देख लेते हैं ना। बस आज इस दुनिया में आप और मैं जो खैर और नेकी कर करा रहे हैं ना, ये कल आखिरत की बेल्ट पे मिलेगी। और लॉस्ट बैगेज अगर कोई आपको फील हुआ ना, तो आप अल्लाह को दिखाकर डिलीवरी ले सकते हैं। अच्छी एयरलाइंस से अगर कोई गलती हो जाए ना, तो घर पहुंचाती है। अल्लाह ताला तो आपका एक जर्रा भी जाया नहीं करेगा। फमे या मलमिस का अल्लाह जरूरतन खैरिन जरा और शर्रन जरा, क्योंकि अल्लाह तुम्हारे अमाल को खूब देख रहा है। इसलिए नेकियां करके ज्यादा तजस्सुस न किया करें कि हमारी उन नेकियों का क्या बना, करके भूलते जाइए और नेकियां करने की तौफीक मांगिए। आगे कुछ खुशफहमियां हैं इन लोगों की। ये कहते हैं कि जन्नत में यहूद और नसारा के सिवा और कोई ना जाएगा, यानी फिरकावारियत, हर फिरका कहता है मैं ही जन्नत में जाऊंगा। ये सिर्फ इनकी आरजुएं हैं। इनसे कहो अगर तुम सच्चे हो तो कोई दलील तो पेश करो। सुनो, जो भी अपने आप को खलूस के साथ अल्लाह के सामने झुका दे, बेशक इसे इसका रब पूरा पूरा बदला देगा। इस पर ना तो कोई खौफ होगा, ना गम और ना उदासी। आइए तदब्बुर करते हैं आयत 106 से 112। आयात पर अमल, हसद से अल्लाह की पनाह मांगनी और हासिदों से होशियार रहना, आगाही फैलाइए, क्योंकि अक्सर अहले किताब मुसलमानों को उनके दीन से फेरना चाहते हैं। आपको पता है कि खास तौर पे वेस्टर्नाइज लाइफस्टाइल में हमारी यंग जनरेशन के जहन इस्लाम से दूर किए जा रहे हैं, कई नामों पे, कई चीज़ों पे। तो अपने बच्चों को कुरान दीजिए, अपने मर्दों को कुरान दीजिए, अपनी औरतों को कुरान दीजिए। जब कुरान पढ़ चुके होंगे, अल्लाह की मर्जी मंशा समझ आ चुकी होगी, तो फिर दूसरों के फितनों में इंसान आने से बच जाता है। मुकर्रर औकात में 5 वक्त नमाजों की अदायगी पहले वक्त पर कीजिए, यानी यहाँ एक नियत करें, अव्वल वक्त की नमाज पढ़ूंगी। करते हैं नियत, जब नमाज का वक्त हुआ चूल्हा बंद, पहले से सोच लीजिए कि ये चावल पकने के लिए रखे हैं तो क्या बीच में मगरिब का वक्त तो नहीं आ जाएगा, और टाल टाल के चावल चूल्हे पे चढ़ जाए, नमाज को लेट करना भी ठीक नहीं, और नमाज के औकात के दौरान ही बीच में चावल भी डाला है, फिर जाके सुन्नतें पढ़ के बीच में दम भी दे दिया, ये भी सारी नमाज को वो चावलों वाली नमाज बनाने वाली बात है। तो नमाजों के औकात के दौरान बीच में कामों को कीजिए। पुराने पाक से रहनुमाई, हर हुक्म को मनसूख करने में दरअसल अल्लाह ताला की हिकमत और रहमत शामिल थी जब तक के कुरान नाजिल हो रहा था। पुख्ता यकीन रखना है कि अल्लाह ताला का हलाल और हराम करदा ही बेहतरीन है। अफ़ो दरगुजर मुसलमानों के अजीम अखलाक का हिस्सा है, इसलिए इसे इख्तियार करना। गौर व फिक्र के गोशे क्या हैं कि माफ़ करना और दरगुजर करना चूँकि मुसलमानों के अजीम अखलाक का हिस्सा है, लिहाजा मैंने गौर करना है कि मेरी तबीयत में माफ़ी और दरगुजर है कि नहीं। अल्लाह ताला की हिमायत और मदद का यकीन करने वाले हर मामला अल्लाह के सुपुर्द कर देते हैं। मैंने गौर करना है कि क्या मैंने तफवीदुल अमर किया है। हिदायत और रहनुमाई मकसूद हो तो सवाल पूछना पसंदीदा, और सवाल बरए सवाल करना नापसंदीदा, इसलिए बहुत सवाल ना पूछा करें। अल्लाह और नबी की इताअत करने वाले क़यामत के दिन बेखौफ और मुतमईन होंगे। टेंशन फ्री जोन क्या है? अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, और अल्लाह आपको मुझे इस पे डाल दे। आगे कुछ बातें फिरका वारियत और मस्जिदों की आबादी और बर्बादी की हैं। आयत 113 से 119। वकालत यहूद लैसत النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء। यहूद कहते हैं कि नसरानी हक पर नहीं है, और नसरानी कहते हैं कि यहूदी हक पर नहीं है, यानी हर फिरका दूसरे फिरके को बातिल साबित करना चाहता है, हालांकि ये सब लोग तौरात पढ़ते हैं। इस तरह इन्हीं जैसी बातें बे लोग भी कहते हैं। क़यामत के दिन अल्लाह ताला इनके इख्तलाफ का फैसला इनके दरमियान करेगा। इस शख्स से बढ़कर जालिम कौन है? जो अल्लाह ताला की मस्जिदों में अल्लाह ताला के जिक्र किए जाने को रोके और इनकी बर्बादी की कोशिश करे, ऐसे लोगों को खौफ खाते हुए ही इसमें जाना चाहिए। इनके लिए दुनिया में भी रुसवाई है और आखिरत में भी बड़ा अजाब है, और मशरिक व मगरिब का मालिक अल्लाह ही है। तुम जिधर भी मुंह करो उधर ही अल्लाह का मुंह है। अल्लाह ताला कुशादगी और वसत वाला और बड़े इल्म वाला है। ये कहते हैं कि अल्लाह ताला की औलाद है, नहीं बल्कि वो पाक है। जमीन व आसमान की तमाम मखलूक इसकी मलकियत में है और हर एक इसका फरमान बरदार है। वो जमीन व आसमान को पैदा करने वाला है, वो जिस काम को करना चाहे कह देता है कुन फयकुन, हो जा बस वो हो जाता है। यहाँ दुआ करें, अल्लाह तो साहिब कुन फयकुन है, हमारी दुआओं पे कबूलियत का कुन कह दे। या अल्लाह हमारे बीमारों की बीमारी पे सेहत का कुन कह दे। या अल्लाह बिगड़े हुओं के लिए हिदायत का कुन कह दे। या अल्लाह हमारे प्यारों, हमारे माँ बाप, हमारे भाई बहनों, हमारे रिश्तेदारों और मोहब्बत करने वालों में जो किसी परेशानी में उसको उससे निकाल दे। जिनकी औलादें किसी परेशानी में, या अल्लाह उनको औलादों के गमों से बचा ले। और या अल्लाह हम सबको दुनिया और आखिरत में सुरखरू कर दे। इसी तरह बेइल्म लोगों ने भी ये कहा कि खुद अल्लाह ताला हमसे बातें क्यों नहीं करता, या हमारे पास कोई निशानी क्यों नहीं आती। इसी तरह इसी जैसी बातें इनके अगलों ने भी कही थी। इनके और उनके दिल यकसां हो गए। हमने तो यकीन वालों के लिए निशानियां बयान कर दी। यह बात नोट कीजिए, सिराज मुनीरा से मुतल्लिक खूबसूरत आयत है आपके सामने। इन्ना अरसलना का, बेशक हमने आपको हक के साथ खुशखबरी देने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा, और जहन्नमियों के बारे में आपसे बासपुरस नहीं होगी। आइए गौर करते हैं 113 से 119 आयात पर अमल। मस्जिद की तंजीम व तरतीब और इसकी तरफ रग़बत रखनी है, यानी मस्जिदों को सही रखिए, टेक केयर कीजिए। मस्जिदें ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए, मस्जिदों में सफाई होनी चाहिए, मस्जिदों की कुर्सियां टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए, मस्जिदों की सफ़ें ढेर लगकर एक कोने में नहीं पड़ी होनी चाहिए, मस्जिदों में टूटी फूटी कुर्सियां नहीं रखनी चाहिए। मस्जिद को ऐसे रखिए जैसे किसी बड़े इंसान के आकर बैठने की जगह। मस्जिदों में बदबू नहीं होनी चाहिए, मस्जिदों के अंदर झगड़े और लड़ाई नहीं होनी चाहिए, और इसी तरह की मजीद बातें। एक नमाज से अगली नमाज तक अल्लाह का जिक्र कीजिए जब भी मौका मिले, खास तौर पे सर्दियों में। मगरिब इशा के बीच में फ़र्क कम है, जोहर असर में कम है, तो कभी घर में भी बैठ जाया करें। एतिकाफ़ की नियत कर लें कि मैं इस वक्त जोहर से असर के बीच में यहाँ बैठ के काम करूँगी। अल्लाह अजर देने पे कादिर है। सुन्नत की पैरवी से सुन्नतों को जिंदा कीजिए और कुरान पाक से रहनुमाई। किसी को गुमराह या बिदती करार देने से पहले दलील ले लीजिए। आज हमारे कल्चर में ये भी बहुत आम है, सोशल मीडिया पे इधर उधर फलां गुमराह फलां बिदती। सब्र कीजिए, आप इंसानों के साथ जीत नहीं सकते जब तक आप दलील ना दिखाएं। कोई किसी को ये तक नहीं कह सकता कि उसने जिना किया है, या चार गवाह लेकर आएगा या फिर 80 कोड़े खाएगा। ये एक सिर्फ मिसाल दी आपको सोचने की खातिर। दूसरों के बारे में मुंह सी लीजिए, ज़िब्त मौत। जब बात करें तो उसकी दलील दें, और आपकी सेल्फ मेड दलील नहीं होनी चाहिए। मस्जिद में अंधेरी इबादत और इताअत में रुकावट बनना बड़ा जुल्म है। दुआ कीजिए अल्लाह में खैर की चाबियां और शर के ताले बनाए, इसको जिम बना दीजिए। अल्लाह में खैर के ताले और शर की चाबियां ना बनाए। अल्लाह के काम हो रहे हैं, हम उसमें पार्ट डाल दें, हिस्सा डाल दें, ताउन अल बिरी व तकवा, तो हमारा नसीब है, लेकिन आप उसमें रुकावट ना बनिए, वरना आप इस बोझ को बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, ना दुनिया में ना आखरत में। हक पाने के लिए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशखबरियों और डरामों को सामने रखना है, यानी अपनी मर्जी से लोगों में फतवे नहीं बांटते, नहीं तुम भी जन्नती तुम भी जन्नती, और ऐसे ही लोगों को डराते भी नहीं रहना कि तुमने तो जन्नत में जाना ही नहीं। नबी वाला तरीका इख्तियार कीजिए। गौर व फिक्र के गोशे, मस्जिदों को आबाद करना और तामीर करना ईमान की निशानी है। अपना अमल चेक कीजिए। मस्जिदों को ढाना, खराब करना और आलूदा आलूदा करना मस्जिदों की खराबी है। पूछिए खुद से, कहीं मैं तो नहीं ऐसा काम करती। मस्जिदों में अल्लाह का जिक्र करने वालों को रोकना भी मस्जिदों की खराबी है। मैं अपने किसी कॉल और फेल और अमल से लोगों को मस्जिदों से और दीनी इदारों से दूर तो नहीं करती। कुफर करने वालों के दिल बाहम यकसा और मुशाबे होते हैं। क्या ईमान वालों के दिल भी एक जैसे हैं? इस पे गौर कीजिए और अफसोस के साथ कहना पड़ेगा कि नहीं। आज हम गैरों को अच्छा कह लेते हैं, लेकिन दूसरे मुसलमान को अच्छा नहीं कहते, इल्ला माशाल्लाह। अल्लाह हमारी इस्लाह फरमा दे। आगे जी आयत 120 से 126। वलन तरदान कल यहूदो वलन नसारा हत्ता तत्तबिया मिल्लतहुम। दौरे हाजर के उन मुसलमानों का जो मगरिब ज़दा है, जो वेस्ट को फॉलो करना चाहते हैं, चाहे वो पाकिस्तान, इंडिया या सऊदी अरब के किसी गांव में क्यों नहीं बैठे हुए, उनके लिए इस आयत में बड़ा पैगाम है कि जिनको तुम खुश करना चाहते हो वो कभी तुमसे खुश नहीं होंगे। कैसे? आइए सुनिए। 120, आपसे यहूदी और नसारा हरगिज राजी ना होंगे जब तक कि आप इनके मजहब के ताबे ना बन जाएं। आप कह दीजिए कि अल्लाह की हिदायत ही हिदायत है, और अगर आपने बावजूद अपने पास इल्म आ जाने के फिर इनकी ख्वाहिशों की पैरवी की, तो अल्लाह के पास आपका ना तो कोई हिमायती होगा ना मददगार। जिन्हें हमने किताब दी और वो इसे पढ़ने के हक के साथ पढ़ते हैं, वो इस किताब पर भी ईमान रखते हैं, और जो इसके साथ कुफर करे वो नुकसान वाला है। ए औलादे याकूब, मैंने जो नेमतें तुम पर इनाम की हैं इन्हें याद करो, और मैंने तो तुम्हें तमाम जहानों पर फजीलत दे रखी है। नोट किया आपने? तीसरी बार पहले ही पारे में यह आयत आ गई, या बनी इसराइल अस्कुरु नेमती अल्लती अनमतु अलैकुम। यहाँ वो मौजू पूरा हो रहा है जो पिछले हाफ में शुरू हुआ था। तकरीबन 10 रुकू में बनी इसराइल और यहूद की बातें हुई, अल्लाह ने यहाँ बता दिया, खूब मौके दे दिए। अब नबूवत का ताज इनसे लेकर उम्मत मोहम्मदिया को दिया जाएगा, ये हम दूसरे पारे में पढ़ेंगे। यहूद के अंदर ये बिगाड़ क्यों आया? और आज भी ऐसा बिगाड़ कब आता है कि चुने हुए लोग खुशफहमियों का शिकार हो? उसकी वजह आयत 123 में है, अकीदे आखरत का बिगाड़। खुशफहमियाँ, फुलां सिफारिश कर लेगा, फुलां बचा लेगा, फुलां का पल्लू पकड़ लेंगे, इसलिए 123 में वो मुमकिन सूरतें पेश कर दी। वत्तकु यौमन ला तज्जी नफ्सुन नफ्सिन शैया। उस दिन से डरो जिस दिन कोई शख्स किसी नफ्स को कुछ फायदा न पहुंचा सकेगा, न किसी शख्स से कोई फिदिया कबूल किया जाएगा, और ना इसे कोई शिफात नफा देगी, ना इनकी मदद की जाएगी। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह बनी इसराइल की तारीख से चंद अहम वाक़यात और इनामात का तذکرہ मुकम्मल हुआ। आयत 40 पे ये बात शुरू हुई थी, 123 पे पूरी हुई। ज़रा माइनस करके देखिए, तकरीबन 70 से 80 आयात के बिटवीन आयात पे बनी इसराइल का किस्सा था। क्यों भाई? लोग सवाल करते हैं कि कुरान खोलते ही बनी इसराइल और यहूद की बातें क्यों हैं? क्या ये उनकी बुराइयां हो रही हैं? नाउज़ु बिल्लाह, उनकी गैबत है? नहीं, हम मुसलमानों को बताया जा रहा है कि माजी के मुसलमानों ने जो गलतियां की हैं तुम ना दोहराना। तो अभी तक का सूरह बकरा का हिस्सा बनी इसराइल का था जो माजी के मुसलमान थे। इस सूरत को उलमा ने सूरतुल उम्मतैन भी कहा, दो उम्मतों की सूरत। पहली कौन सी? जिनका तस्करा गुजर गया। दूसरी उम्मत कौन सी आनी है अभी? नो नो ना, वो कौन सी है? आगे। और वो कौन से आएंगे? उम्मत मुस्लिमा व गजाली का जल ना को मौत वसदन। दूसरे पारे का शुरू। ये जो बीच की आयतें हैं ना, बड़ा गौर से सुनने का नुकता है, हमारे थीम के साथ भी इसका गहरा ताल्लुक है। अभी तक माजी के मुसलमान नाकाम हुए, क्यों हुए, क्या क्या खराबियां, हिर्स था, लन नस्बिर अला तअमिन वाहिद, और जो कुछ खराबियां थी उनकी वो आई। दूसरे पारे में उम्मत मुस्लिमा को आप डेजिग्नेशन मिल रहा है, अब उनको मुंतखब किया जा रहा है। अब यहाँ से पारे के एंड तक एक वर्ल्ड लीडर, एक उस्वे कामिल, एक उस्वे हसना, उस्वतुल आलम, जिसको इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं। शायद आपके जहन में नबी सल्लम का नाम आया हो, तो वो उन्हीं के फॉलोअर्स थे। आपका दीन इब्राहिम वाला दीन था। तो आइए ज़रा मोहब्बत से पढ़ते हैं, यानी हजरत इब्राहिम को इमामत किन खूबियों की बिना पर मिली और बतौरे इनाम मिली। आयत 124 से 141 तक जरा गौर कीजिए। वर्ल्ड लीडर, चुने हुए शख्स का तज़किरा, और पहला जुमला क्या है? आजमाइशें, अल्लाह ने आजमाइशों में डाला, वो पूरे उतरे। ये है असल टेस्ट। हम आज आजमाइशों में पूरे नहीं उतरते, इसलिए चुने नहीं जाते। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इनके रब ने कई कई बातों से आजमाया, और उन्होंने सब को पूरा कर दिया तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं तुम्हें लोगों का इमाम बना दूंगा। अर्ज करने लगे और मेरी औलाद को, फरमाया मेरा वादा जालिमों से नहीं। ये नुक्ता है काबिले गौर। आजमाइशें क्या थीं? आप सब हर साल ज़िलहज के लेक्चर्स में सुनते हैं, ईद कुर्बान के खुतबों में सुनते हैं और कुरान से भी सुनेंगे। बुढ़ापे की औलाद की गर्दन पे छुरी रखना, उसको तनख्वाह बेआब हो गया वादी में छोड़ देना, और खाना काबा की तामीर, और सब को छोड़ना, बिरादरी, खानदान, बाप के सामने आके बुतों को तोड़ना, जलती आग में से जिंदा निकल आना। ये इब्राहिम के वो मोहब्बत भरे मामलात हैं जिसको इंशाल्लाह हम आगे पढ़ते जाएंगे। लेकिन यहाँ इतनी बात नोट कीजिए, जालिमों को नेक लोगों की दुआएं भी फायदा नहीं देती। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का चुनाव हुआ, अल्लाह ने उनसे अपने घर का काम लिया। अल्लाह जिसको चुनता है ना उसे अपने दीन के काम लेता है। इसका तस्करा आगे आयत नंबर 125 से ऑनवर्ड। हमने बैतुल्लाह को लोगों के लिए सबाब और अमन अमान की जगह बनाई, तो मुकाम इब्राहिम को जाए नमाज बना लो। हमने इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम से वादा लिया कि तुम मेरे घर को तवाफ करने वालों और एतिकाफ करने वालों और रुकू सजूद करने वालों के लिए पाक साफ रखो। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा ऐ परवरदिगार तो इस जगह को अमन वाला शहर बना दे और यहाँ के बाशिंदों को जो अल्लाह ताला पर और क़यामत के दिन पर ईमान रखने वाले हों फलों की रोजियां दे, अल्लाह ताला ने फरमाया मैं काफिरों को भी थोड़ा फायदा दूंगा, फिर इन्हें आग के अजाब की तरफ बेबस कर दूंगा। ये पहुंचने की बुरी जगह है। खाना काबा के लिए बातें, मक्का शहर के लिए दुआएं, क्या पता चला? आइए तदब्बुर करते हैं आयत 120 से 126 पे। आयात पर अमल कैसे होगा? गैर मुस्लिमों की पैरवी नहीं करनी, अल्लाह की रज़ा को पाने की कोशिश करनी है। क्योंकि आप उनकी पैरवी कर भी लेंगे ना, कपड़े कम कर लें, बाल खोल लें, हाल हुलिया उन जैसा बन जाए, वो खुश फिर भी नहीं होंगे। सबसे आसान अल्लाह को खुश करना है, वो बड़ी जल्दी खुश हो जाता है। अल्लाह को राज़ी कर लें, रब राज़ी तो जग राज़ी वाली कहावत पूरी हो जाएगी। कुरान पाक की तिलावत या उसे याद करते हुए अपने लिए अमल के पहलू निकालिए, क्योंकि इसमें आयतों की तिलावत की भी बात हुई। जब पढ़ रहे हैं सुन रहे हैं, कुछ बातें तो मैं आपको बता देती हूँ ना, कुछ अल्लाह भी आपके दिल में डालेगा, उसको भी चुपके से कोने में कहीं नुक्ते पे लिख लिया करें, ताकि कल जब अपने नोट्स को खोलें तो वो सारे वादे याद आ जाएं जो इस वक्त अपने आप से कर रहे हैं। फिर इसके बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम की अपने बेटे को साथ लेकर अल्लाह के घर की तामीर का सुनना आपके दिल में रश्क डाल रहा होगा कि अल्लाह हमारी औलादें कब दीन में हमारी मददगार होंगी, अल्लाह हमारे बच्चों को भी मस्जिदों के टेक केयर बना, अल्लाह हमारी बेटियां भी दीनी दरसगाहों को संभालें, अल्लाह हमारे बेटों को मुजाहिद बना, अल्लाह हमारी बेटियों से भी अपने दीन का दिफा करा। तो उसके लिए क्या करें? आइए दुआ मांगते हैं। रब्बना हब लना मिन अज़्वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रता अयुनिन व जअलना लिलमुत्तकीना इमामा। ये सूरह फुरकान की आयत 74 है। इबादुर्रहमान की दुआओं में से एक दुआ है, आप भी इसको मांगिएगा। फिर कुरान पाक से रहनुमाई कैसे लेंगे? मुसलमानों का हदफ अल्लाह की खुशनुदी हासिल करना है, गैर मुस्लिमों की नहीं। हिदायत के असल जराए किताबो सुन्नत हैं, इन्हीं को अपनाना है। सच्ची हिदायत के लिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम जैसा यकसू तरीका इख्तियार करना होगा। फोकस्ड, बी फोकस्ड, ना इधर देखिए ना उधर देखिए। आपने ड्राइवर को देखा होगा गाड़ी में, कुछ भी हो रहा है लोग ये देख रहे, उधर देखो इस खिड़की से ये खा लो, वो हंसले बोल रहे, वो नहीं देखता क्योंकि उसको आगे जाना है। ट्रेन जैसे सीधी गुजरती है ना, आप भी अपने इस दीन पे मुतमईन हो जाए, अपने इस काम पे फोकस हो जाए, अल्लाह ताला आपको मंजिल पे जरूर पहुंचाएंगे। फिर गौर व फिक्र के गोशे, अहले किताब के मवाफिक उमूर की जस्तजू की बजाय अल्लाह की खुशनुदी की जस्तजू कीजिए। यानी अहले किताब किन बातों से खुश है ना खुश है उसको छोड़ दें आप, अल्लाह किस बात से खुश है उस पर गौर कीजिए। बैतुल्लाह की तरफ बार बार जाना अल्लाह ताला की तरफ लौट कर जाने की याद दहानी है। कितने लोग हैं तड़पते हैं, कुछ लोगों की सारी जिंदगी की कमाई एक उम्रे पे चली जाती है, कुछ लोगों का सब कुछ होता है महरम नहीं है, कुछ लोगों के पास सेहत नहीं है। अल्लाह आप सबसे मुझसे बेहतरीन उम्रे पर हज अदा करवाए। किताब इलाही की तिलावत दरअसल इसकी तबाह के लिए कोशिश करना, अल्लाह मुझे आपको इसके लिए ज़िंदगी के आखिरी दिन तक खपा दे। हाकिम और खलीफा बनने की शराइत क्या हैं? अदल और इंसाफ, एहसान और फजल। अल्लाह इन खूबियों से मुत्तसिफ कर दे हमें। और अब पारा एंड की तरफ जा रहा है, आयत 127 से 134। तसव्वुर में लाइए, एक बूढ़ा सा बाप है और एक जवान होने से पहले की उम्र का बच्चा, और दोनों अल्लाह का घर बना रहे हैं। वइज़ यरफ़ऊ इब्राहीम अल-क़वाइद मिन अल-बैत व इस्माईल, और जुबान पे अल्फाज के हैं, रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम काबा की बुनियादें उठाते जाते थे और कहते जा रहे थे कि हमारे रब, हमसे कबूल फरमा, तू ही सुनने वाला और जानने वाला है। बुनियादें क्यों उठाई? बुनियादें वही थी, तूफान नूह में डूब गया, ऊपर से इमारत टूट गई। अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इल्हामी तरीके पे वो जगह बता दी कि इधर बुनियादें हैं, तो उन्हीं बुनियादों पे बाद में इन्होंने खड़ा किया। और जुबान पे लफ्ज़ क्या है? रब्बना तकब्बल मिन्ना। क्यों? जुमला लिखिए, असल चीज़ काबिलियत नहीं, कबूलियत है। कबूलियत की फिक्र कीजिए। हम सब भी इस अपने अमल पे क्या कहें? रब्बना तकब्बल मिन्ना। अल्लाह ने कबूल ना किया ना तो बेकार है, सारी दुनिया अच्छा कहती रहे कोई फायदा नहीं, और रब ने कबूल कर लिया, दुनिया सारी आपको गलत कहती रहे तो परवाह ना कीजिए। अब दुआएं सुनिए जो इब्राहिम की जुबान पे थी। ए हमारे रब, हमें अपना फरमा बरदार बना ले, और हमारी औलाद में से भी एक जमात को अपना इताअत गुजार रख, और हमें अपनी इबादतें सिखा, और हमारी तौबा कबूल फरमा। तू तौबा कबूल फरमाने वाला और रहमो करम करने वाला है। रब्बना वबअथ फीहिम रसूलन मिनहुम, ए हमारे रब, इन्हीं में से एक रसूल भेज जो इन्हें किताबो हिकमत सिखाए और इन्हें पाक करे, यकीनन तो गलबे वाला और हिकमत वाला है। ये है जी सिराज मुनीरा, उस्वतुल आलम। अल्लाह के नबी कौन थे? दुआए इब्राहिम का समर थे। आपने फरमाया, अना दावत अबी इब्राहिमा काल वहुआ यरफुल कवायद फिल बैती रब्बना वबस फीहिम रसूलम मिनहुम। मैं अपने वालिद इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ हूँ जो उन्होंने बिनाए काबा यानी काबा की बुनियादों को बुलंद करते हुए मांगी थी। ए हमारे रब, इन्हीं में से एक रसूल भेजते। अल्लाहु अकबर कबीरा। 4,000 साल बाद ये दुआ पूरी हुई। इखलास से की भी नेकियां जाया नहीं होती। आप अपनी जिंदगी में ये समर देखे ना देखे, आपके बाद वाले देखेंगे। शर्त यह है कि लिल्लाहियत हो और उसवे हसना के मुताबिक हो काम। अब आपको मुझे सबको अल्लाह ने एक पैगाम दिया, क्या? वह मैं यरगबु अम मिल्लति इब्राहीमा इल्ला मन सफिह नफ्सा। दीन इब्राहिमी से वही बेरगबती करेगा जो महज बेवकूफ हो। हमने तो इसे दुनिया में भी चुन लिया यानी बरगुजीदा किया था, और आखिरत में भी वो नेकुकारों में से है। जब कभी भी ने इनके रब ने कहा असलम, قال اسلمت لرب العالمين, फरमा बरदार हो जाओ, उन्होंने कहा मैंने रब العالمین की फरमा बरदारी की। अल्लाह हमें भी इसकी तौफीक दे। ये है चुनाव की बड़ी वजह, जब रब कुछ कहे जी अल्लाह। कोई इफ्स नहीं, कोई बट्स नहीं, कोई प्रोस नहीं, कोई कॉन्स नहीं, कोई नफा नुकसान नहीं हुआ, कोई कैलकुलेटिंग माइंड नहीं होता मोमिन का। ये करूंगी तो फायदा होगा कि नुकसान, लोग खुश होंगे कि नाराज, लोग जाएं जिधर मर्जी, मैं तो अपने रब की बात मानने लगी। और सिर्फ इब्राहिम ने नहीं, बल्कि आयत 132, इसकी वसीयत इब्राहिम और याकूब अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद को की कि हमारे बच्चों, अल्लाह ने तुम्हारे लिए इस दीन को पसंद फरमा लिया है। अल्लाह हमारे बच्चों के लिए भी इसी दीन को पसंद कर ले। खबरदार, तुम मुसलमान ही मरना। या हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के इंतकाल के वक्त तुम मौजूद थे जब उन्होंने अपनी औलाद को कहा कि मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे? आज आपने भी ये सवाल अपनी नस्लों से पूछना है। तो सबने जवाब दिया कि आपके माबूद की, और आपके अबाउ अजदाद यानी इंसेस्टर सलफ सालेहीन के, आज की जुबान में कौन? इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम और इसहाक अलैहिस्सलाम के माबूद की, जो माबूद एक ही है और हम इसी के फरमा बरदार रहेंगे। अल्लाह करे हमारी नस्लों का भी यही ईमान रहे, अल्लाह हमारी नस्लों को इस्लाम पे रखना, अल्लाह उनमें कभी कोई ये ना कहे आई एम एक्स मुस्लिम, मैं तो माजी का मुसलमान, कोई ये ना कहे आई एम लीविंग इस्लाम। और आज ये फितना उम्मत मुस्लिमा के सर पे खतरा बन के कूक रहा है, सुनामी से जलजले से क्या आफत टूटेगी जो इस वक्त हमारी नस्लों के जहनों पे टूट रही है। तो याद रखे जहाँ की मट्टी होती है वो वहीं लगती है, वेस्ट की नस्ल में जाकर तबलीग वही करेगा जो खुद वेस्ट में रह चुका हो, जिसको वहां के कवायदो जवाबित है, बाहर वाला तो हो सकता है जुबान ना खोले, मरूबियत इतनी आ जाती है, जिसको इंग्लिश नहीं आती वो इंग्लिश समझने वालों के लिए क्या बात करेगा। और आज हमारी वो नस्लें जो पैदा होकर वही बोली वही लिखी पढ़ी, उनको तो आपकी जुबान का शायद ही कोई लफ्ज समझ आता हो, उनकी पिच ही नहीं मिलती, वेवलेंथ नहीं मिलती। तो अल्लाह हमारी नस्लों के लिए वहीं के लोगों को तैयार करे जो कुरान सुन्नत से जुड़कर इस्लाम की तबलीग के लिए उन मुल्कों में रहें और इस पैगाम को मशरिक से मगरिब और मगरिब से मशरिक की तरफ फैला दें, पूरे ग्लोब पे एक ही नाम हो और वो क्या हो ला इलाहा इल्लल्लाह। अब इन सब पे कमेंट, ये एक जमात है वो तो गुजर चुकी, जो उन्होंने किया वो उनके लिए और जो तुम करोगे तुम्हारे लिए, इनके अमाल के बारे में तुम नहीं पूछे जाओगे, यानी वहां हर एक अपने अपने अमाल का जवाब दे। सलफ सालेहीन जब बाप दादा की नेकियां मेरे आपके काम नहीं आएंगी, ये अलग बात है कि मेरी आपकी नेकी उनके काम आ सकती है अगर उन्होंने हमें इसमें मदद की हो। तो आयत 127 से 134 पर तदब्बुर और अमल, आयात पर अमल। रब्बना तकबल मिन्ना इन्नक अंतस समील अलीम, ये दुआ नेकी करने के बाद करिए ताकि कबूलियत हो जाए। रब्बना वजालना मुस्लिमैनि लका व मिन ज़ुर्रियतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक, इस दुआ को अपने लिए और अपनी औलाद के लिए कीजिए। कुरान पाक की तिलावत के साथ तफसीर और हदीस का इल्म हासिल करना, कुरान पाक से रहनुमाई क्या मिली, अंबिया कराम ने भी औलाद के ईमान और इस्तकामत की दुआएं की, हमें भी इन दुआओं की अशद ज़रूरत है। इबादत के हर अमल के बाद दुआ रब्बना तकबल मिन्ना इन्नक अंतस समीउल अलीम कहना इस बात का इजहार है कि अल्लाह हमने अपनी सी कोशिश की, कमी बेशी को तो अपनी तरफ से पूरा कर दे। हम अंबिया कराम से ज्यादा तौबा की कबूलियत की दुआ मांगने की जरूरत है, क्योंकि वो तो गुनाहों से पाक थे, हम दिन रात गुनाह करते हैं। गौर व फिक्र के गोशे, कबूलियत की दुआ मांगना अपनी कोताही और कमी का एतराफ करना। और इन आयात में अल किताब से मुराद कुरान है, जबकि अल हिकमा से मुराद सुन्नत है। तो कुरान के साथ हदीस और सुन्नत को लेकर जिंदगियों के नक्शों में रंग भरना। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम नेक कामों के करने वाली एक बेहतरीन मिसाल थे, हमने भी उनको फॉलो करना है। जिस हालत पर जिंदगी गुजारी जाए मौत भी इसी हालत पर आती है, इस एहसास के साथ एक एक लम्हा जीना है। और उसके बाद आखिरी आयत पारे की 135 से 141, وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين, ये कहते हैं कि यहूदो नसारा बन जाओ तो हिदायत पाओगे, तुम कहो बल्कि सही राह पर मिल्लत इब्राहिमी वाले हैं, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम खालिस अल्लाह के परस्तार थे और मुशरिक ना थे। ऐ मुसलमानों तुम सब कहो, अब हम सबको कहा जा रहा है कि ये कहो, क्या हम अल्लाह पर ईमान लाए और इस चीज पर भी जो हमारी तरफ उतारी गई और जो चीज इब्राहिम इस्माइल इसहाक और याकूब अलैहिस्सलाम पर भी और इनकी औलाद पर भी और जो कुछ अल्लाह तआला की जानिब से मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम और दूसरे अम्बिया अलैहिस्सलाम को दिए गए, हम इन में से किसी के दरमियान फर्क नहीं करते, हम अल्लाह के फरमाबरदार हैं। और अब आपके मेरे लिए सब के लिए एक मेयार क्राइटेरियन सैंपल, जिन जैसा ईमान लाना है फिर कबूल होगा। एक सैंपल होता है ना, उसके मुताबिक अगर ऑर्डर जाए देखते हैं ये था ठीक है एक्सेप्ट, जरा सा ऑर्डर देने से पहले जो सैंपल दिखाए तो उससे चीज गलत हुई रिजेक्ट। आपके मेरे लिए जो ईमान का सैंपल अंबिया कराम और उनमें भी या इब्राहिम और सहाबे कराम, इसलिए फरमाया फाइन आमनु बिमिसली मा आमन तुम भी, अगर वो तुम जैसा ईमान लाए तो हिदायत पाए, और अगर मुंह मोड़े तो वो सरीह इख्तलाफ में है। अल्लाह ताला इंसान करीब आपकी किफायत करेगा, वो खूब सुनने और जानने वाला है। करो क्या, सिबगत अल्लाह ही बमन अहसन मिन अल्लाह ही सिबगा, अल्लाह का रंग इख्तियार करो, अल्लाह ताला से अच्छा रंग किसका होगा, हम तो इसी की इबादत करने वाले हैं। सिबगत अल्लाह, अरबी जुबान में रंग के लिए दो लफ्ज कुरान में आप पढ़ेंगे, सिबगा और लौन। लौन गुजर गया गाय के वाक्य में, मा लौनुहा, यहाँ सिबगा है, फर्क क्या है। सिबगा कहते हैं वो रंग जो खुद चढ़ाए, जिसको आप डाई करना कहते हैं। लौन कहते हैं नेचुरल कलर, कुदरती रंग। यहाँ हमें सिबगत अल्लाह की बात की गई, ये कौन सा रंग है, तो लिखिए अल्लाह की इताअत का रंग, अल्लाह की बंदगी का रंग, फिरका वारियत से पाक रंग, इखलास का रंग, इत्तबाए रसूल का रंग, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैच होने का रंग। और इस रंग में रंग जाने वाला अल्लाह वाला बन जाता है। फिरका वारियत से पाक, काल अल्लाह व काल रसूल पे जमने वाले का रंग है। तो सिबगत अल्लाह में रंगना, ये आपका मेरा गोल है इस बारे में। और ये कौन होते हैं जो अल्लाह की बंदगी के अंदर रंग जाते हैं, वो फरमा बरदार बंदे होते हैं, वो मुखलस बंदे होते हैं, अल्लाह से मोहब्बत करने वाले बंदे होते हैं, इतात गुजार बंदे होते हैं, यकसू होकर बंदगी करने वाले होते हैं, और गलती पर तौबा करने वाले होते हैं। अल्लाह हम सबको ऐसा बना दे। आप कह दीजिए, क्या तुम हमसे अल्लाह के बारे में झगड़ते हो, जो हमारा और तुम्हारा रब है, हमारे लिए हमारे आमाल है और तुम्हारे लिए तुम्हारे आमाल, हम तो इसी के लिए मुखलिस हैं। क्या तुम कहते हो कि इब्राहिम और इस्माइल और इसहाक और याकूब अलैहिस्सलाम और इनकी औलाद यहूदी या नसरानी थे, कह दो क्या तुम ज्यादा जानते हो या अल्लाह ताला। अल्लाह के पास शहादत छुपाने वाले से ज्यादा जालिम और कौन है। अल्लाह ताला तुम्हारे कामों से गाफिल नहीं, ये उम्मत है जो गुजर चुकी, जो तुमने किया वो तुम्हारे लिए और जो उन्होंने किया वो उनके लिए, और तुमसे उनके आमाल के बारे में सवाल न किया जाएगा। हर एक अपने आमाल का मुकल्लफ है, किसी से किसी दूसरे के बारे में सवाल न किया जाएगा। इस शऊर के साथ सुनिए, ये उम्मत है जो गुजर चुकी, जो उन्होंने किया उनके लिए और जो तुमने किया वो तुम्हारे लिए है, और तुम उनके आमाल के बारे में सवाल न किए जाओगे। तो क्या पता चला, तदब्बुर वल अमल, आयत 135 से 141, अमल की बातें, अल्लाह से हिदायत मांगते रहना। बात शुरू हुई बारे के शुरू में, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम से, यहाँ पूरी हो रही है हिदायत पे। इस्लाम से हटकर ना कोई हिदायत है और ना ही दुनिया और आखिरत की सआदत है, लिहाजा इस्लाम को अपनाना, अकीदा हक का खुल्लम खुल्ला इजहार करना और इसकी दावत देनी है, किसी के डर से इसको छुपाना नहीं। कुरान पाक से रहनुमाई, मोमिन लोगों की लच्छेदार बातों से धोखा नहीं खाता। कोलू कौलन सदीदा, सीधी बात कीजिए, कोई मानता है तो मान ले, नहीं मानता तो उसकी मर्जी। लोगों के नारों और दावों पर नहीं, सही दलाइल पर तवज्जो देनी है, हक पर साबित कदम रहना है और इसे लोगों में कबूल करवाना है। गौर व फिक्र के गोशे, ईमान जुबान से इकरार और दिल से यकीन के मजमुए का नाम है। दीन और अमल दोनों को अल्लाह के लिए खालिस करना है। अल्लाह का रंग बेहतरीन रंग है, इसमें रंगने की कोशिश करनी है। तमाम आमाल का बदला जरूर मिलेगा, इस शऊर के साथ छोटे से छोटा और बड़ा अमल करना है, और आमाल में एक अमल जो हम पारे कैंड पे करते हैं, सुन्नत। आज लोग जितना कुरान सुन्नत से दूर हुए, अल्लाह के नबी की बहुत सारी सुन्नतों से दूर हो गए। तो आज एक ऐसी सुन्नत बताऊंगी जो शायद आप में से भी कुछ लोगों के लिए नहीं हो। इंडिया पाकिस्तान कल्चर को जितना को मैं जानती हूँ, आमतौर पर वजू करते वक्त सीधे हाथ से कुली करते हैं और उल्टे हाथ से पानी लेकर नाक में डालते हैं। सुन्नत तरीका क्या है, आइए हदीस सुनिए। बुखारी की 191, एक ही चुल्लू से कुली करना और नाक में पानी डालना, ये मसनून है। अब्दुल्ला बिन जैद रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि वजू करते वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बर्तन से पहले अपने दोनों हाथों पर पानी डाला, फिर इन्हें धोया, फिर कुल्ली की और नाक में एक चुल्लू से पानी डाला और 3 मरतबा ऐसे ही किया। यानी एक हाथ में पानी लिया, कुल्ली की, थोड़ा सा पानी हाथ में बचा लिया, बाद में उसको नाक में डाला। दोबारा हाथ पानी में गया कुल्ली की, और उसी से पानी डालना है। तो इंशाल्लाह आज इस पारे की नज़र इस सुन्नत को लेंगे। इसी तरह हम नमाज की, वुजू की, तहारत की, अखलाक की और मामलात की सुन्नतों को करते रहेंगे। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नक अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नक अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाह ताला गलतियों को माफ़ करे, इसलाह फरमाए, जो कमी थी मेरी वजह से थी, जो खैर थी वो अल्लाह की तरफ से और वो साथी जिन्होंने इस पे मेहनत की, और सबसे बढ़कर आप सबके लिए, आप सब बहुत अच्छे लिसनर्स हैं। अल्लाह ताला आप सबसे राज़ी हो। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।